लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि युवा व्यक्ति अपनी बुलाहट का प्रत्युत्तर उदारता पूर्वक दें तथा समर्पित जीवन हेतु पुरोहितिक मिशन के वरण पर विचार करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, इसराइल ने मेरी एक भी नहीं सुनी, इसलिए मैंने उस हट धर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमाना आचरण करने लगी। यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इसराइल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चाटुकारी करते और उनकी स्थिति सदा के लिए बनी रहती। जब मैं इसराइल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 81वें भजन के अंतिम 6 पद। इन पदों के पाठ से ही विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस बात का हम सिंहावलोकन कर चुके हैं कि उक्त पदों में 81वें भजन का रचयिता अपने मुख से ईश्वर की बात कहता है। वह बताता है कि मिस्र की गुलामी से निकली इजरायली जाति के दुख उसी के दुष्कर्मों का फल था। उन्होंने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया और अपने हठ धर्म के कारण ईश्वर की नहीं सुनी, यही उनके दुख और उनके असंतोष का कारण बना। 81वें भजन के द्वारा प्राचीन व्यवस्थान के लोगों को ईश्वर के 10 नियमों का स्मरण दिलाया गया है, जिनमें सबसे पहला हुक्म है, ईश्वर के सिवाय मनुष्य अन्य देवी देवताओं की आराधना न करे। अपने हठ धर्म के कारण मिस्र की गुलामी के बाद प्रतिज्ञात देश तक जाने वाली इसराइली जाति के लोगों ने यही किया था और इसीलिए उन्हें असंतोष और दुख भोगना पड़ा था। भजन के 15वें पद में लिखा है, यदि इसराइल मेरे पथ पर चलता तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। अर्थ स्पष्ट है कि इसराइल प्रभु के पथ पर नहीं चला और इसीलिए उसे कष्ट भोगना पड़ा। प्रभु ने उन्हें जीवन के चयन का आमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। श्रोताओं, एक प्रकार से 81वां भजन केवल उस युग के लोगों के लिए ही चेतावनी नहीं थी, बल्कि यह हमारे लिए भी और युग युगांतर तक विश्व के समस्त लोगों के लिए एक चेतावनी है। भजनकार विधि विवरण ग्रंथ के 31वें अध्याय में निहित प्रभु ईश्वर की पेशकश का स्मरण दिलाता है। इसके 19वें और 20वें पदों में हम पढ़ते हैं, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो, इसी में तुम्हारा जीवन है।
रोज का आहार दे दे हे पिता मेरे प्रभु, रोज का आहार दे दे हे पिता मेरे प्रभु। हर देवर से हर मन को पूजे सब जन ईश्वर को, हर देवर से हर मन को पूजे सब जन ईश्वर को, धरती से तारों तक तेरी ही शान, बिन तेरे सुना है सारा जीवन।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 82वें भजन पर दृष्टिपात करें। 8 पदों वाला यह भजन अन्यायी शासकों के विरुद्ध आसाफ द्वारा रची गई प्रार्थना है। इसके प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। ईश्वर स्वर्ग सभा में उठ खड़ा हुआ है, वह देवताओं के बीच न्याय करता है। तुम कब तक दोषियों के पक्ष लेकर अन्यायपूर्ण निर्णय देते रहोगे? निर्बल और अनाथ की रक्षा करो, दरिद्र और दीन को न्याय दिलाओ। निर्बल और दरिद्र का उद्धार करो और उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाओ। श्रोताओ, इन पदों में भजनकार ने हमारे समक्ष स्वर्ग का चित्र प्रस्तुत किया है। उसकी कल्पना में स्वर्ग जैसा है, उसी के अनुकूल उसने हमारे समक्ष स्वर्ग, ईश्वर और उनके समक्ष प्रस्तुत सभा का चित्रांकन किया है। उसने प्रभु ईश्वर को संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करते देखा तथा विश्व के निरंकुश शासकों को फटकारा है। उन्हें स्मरण दिलाया है कि वे नहीं अपितु केवल प्रभु शासक हैं। 82वें भजन का रचयिता उसी प्रकार स्वर्ग का दृश्य देख रहा था जिस प्रकार नबी ईसाया ने देखा था। ईसाया के ग्रंथ के 6वें अध्याय के प्रथम 3 पदों में हमें यह विवरण मिलता है। मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे, उनके 6-6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए, और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 है विश्व मंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। श्रोताओ, ऊंचे सिंहासन पर बैठकर न्याय करने वाले प्रभु का दृश्य भले ही हमारे युग के लोगों के लिए अटपटा सा लगे, किंतु उस युग के लिए यह बुद्धिगम्य था। इसलिए कि ईसाया के समय में असीरियाई राजा और फिर नबी यिर्मयाह के समय में बाबिलोन यानी कि बाबुल के राजा सबके सब स्वतः को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु घोषित करते थे। अन्य देशों के छोटे छोटे राजाओं को उनका न्याय सुनने के लिए अथवा उनके द्वारा घोषित नए नियमों को जानने के लिए सभा में बुलाया जाता था। उदाहरणार्थ राजा हिजकिया के 14वें वर्ष अस्सूर के राजा सनहरीब ने यूदा के सब किलाबंद नगरों पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह स्वतः को राजा धीराज कहकर पुकारता था तथा मनमाना शासन करता था। इसी प्रकार की पृष्ठभूमि में 82वां भजन रचा गया था, जिसमें भजनकार निरंकुश शासकों को ललकारता है तथा उन्हें स्मरण दिलाता है कि केवल ईश्वर ही यथार्थ राजा हैं, समस्त राष्ट्र उनके अधीन हैं। वस्तुतः श्रोताओं, भजनकार को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस युग के राजा अपने आप को ईश्वर मानने लगे थे। वे अपनी प्रजा को अपने अधीन सेवा करने वाली मानते थे, इसीलिए भजनकार को यह फटकार बतानी पड़ी। भजनकार यह नहीं बताता कि ईश्वर कौन है, अपितु यह कि ईश्वर की शक्ति का मर्म क्या है। उनकी शक्ति लौह दंड में नहीं अपितु दया में प्रदर्शित होती है। वह पीड़ित मानव जाति के लिए सामाजिक न्याय में परिलक्षित होती है।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु।
शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति